आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
पेश है आज के संक्षिप्त समाचार ऋषाली जैन के साथ। आज की बड़ी खबर में देश में नेशनल डिसेबिलिटी इंश्योरेंस स्कीम में होने वाले बदलाव संसद में पारित होने के बाद अब विकलांगता अधिवेता समूह अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। उनका कहना है कि इन बदलावों में व्यवस्थागत समस्याओं का निदान नहीं किया गया है। इस नए बिल के जरिए विकलांग व्यक्तियों के फंडिंग के प्रयोग करने के तरीके और उपलब्ध सेवाओं की सूची को बदला गया है। इस नए कानून से $46 बिलियन की स्कीम का नियंत्रण करने की कोशिश की गई है। अगर ये नए बदलाव नहीं किए जाते तो आने वाले 2 सालों में NDIS मेडिकेयर से भी महंगी योजना बन जाती। लेकिन अधिवेता समूहों का कहना है कि नए फंडिंग कार्यक्रम में हुई कटौतियां विकलांग व्यक्तियों की मुश्किलें बढ़ा देंगी। वहीं दूसरी ओर नए माता पिता जल्द ही सरकार पोषित पेड पेरेंटल लीव के ऊपर सुपर एनुएशन की कमाई भी कर सकेंगे। ये नया प्रस्ताव आज फेडरल संसद में पेश किया गया। अगर ये नया नियम पारित होता है तो जुलाई 2025 से नए माता पिता 12% सुपर एनुएशन पा सकेंगे। इससे 1,80,000 परिवारों की सहायता होगी जो प्रसव के बाद सरकार पोषित छुट्टियों का इस्तेमाल करते हैं। सोशल सर्विसेज मंत्री अमांडा रिश्वर्थ ने ABC के नेशनल कार्यक्रम पर बताया कि ये नया कानून लैंगिक समानता को बढ़ावा देगा। वहीं न्यूकासल में अब ऑस्ट्रेलिया एक लंबी दूरी की मिसाइलों की फैक्ट्री बनाएगा। सरकार का कहना है कि वे इस योजना में $850 मिलियन तक का योगदान करेंगे। ये फैक्ट्री कॉन्ग्सबर्ग डिफेंस ऑस्ट्रेलिया कंपनी के साथ मिलकर लगाई जा रही है। इस नई फैक्ट्री में नौसेना और मारक मिसाइलें तैयार की जाएंगी। ऐसा कहा जा रहा है कि निर्माण के समय इस फैक्ट्री से 500 से ज्यादा नौकरियां निकलेंगी और ये इलाके में लगभग $100 मिलियन की अर्थव्यवस्था लेकर आएगी। वहीं दूसरी ओर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में सार्वजनिक आवासों में रहने वाले एबोरिजिनल किराएदारों ने राज्य के खिलाफ एक क्लास एक्शन मुकदमा दायर किया है। इस मुकदमे में हजारों लोगों ने एक साथ दावेदारी की है कि राज्य प्रशासनिक अधिकारियों ने घटिया घरों के लिए ऊंचे किराए लेकर एबोरिजिनल लोगों का शोषण किया है। मामले में दावा किया गया है कि राज्य सरकार और हाउसिंग अथॉरिटी घरों का रखरखाव, मरम्मत और देखभाल करने में असमर्थ रहे हैं और किराएदारों को एक सुरक्षित आवासीय व्यवस्था देने में असक्षम रहे हैं। अब ये समूह आर्थिक मुआवजे की मांग कर रहा है और साथ ही मांग कर रहा है कि घरों की सही मरम्मत कराकर कमियों को दूर किया जाए। बायुलू समुदाय की नेता विवियन गॉर्डन का कहना है कि समुदाय इस परिस्थिति से त्रस्त हो चुका है। और अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका में टिम वॉल्ट्स का कहना है कि वे डेमोक्रेटिक पार्टी के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार चुने जाने को अपने जीवन का सबसे बड़ा गौरव मानते हैं। मिनेसोटा के गवर्नर कमला हैरिस के पक्ष में ग्रामीण पक्ष लेकर आते हैं और कमला हैरिस प्रतिद्वंदी डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध आक्रामक कैनवसिंग करती हुई नजर आ रही है। डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में टिम वॉल्ट्स ने अमेरिका के लिए अपने सपने को साझा किया। वहीं कमला हैरिस कल यानी 23 अगस्त को मंच से संबोधन देंगी। और अब अंत में खबरें भारत से। भारत के आंध्र प्रदेश में एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में लगी आग में कम से कम 17 लोगों की मृत्यु हो गई है। रॉयटर्स से बात करते हुए उद्योग सचिव एन युवराज का कहना है कि कम से कम 40 लोग हताहत हुए हैं। बीती रात हुए इस धमाके में एक केमिकल रिएक्टर को वजह बताया जा रहा है। एसियंशिया एडवांस्ड साइंसेज नाम की इस कंपनी में हुए इस धमाके में कंपनी की ओर से अभी तक कोई भी बयान नहीं आया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अनकापल्ली में हुए फैक्ट्री धमाके में गई जानों का हमें दुख है। हादसे में प्रभावित परिवारों के लिए मैं सांत्वना प्रकट करता हूं। राज्य सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। बीते साल भी इस जिले में एक फार्मास्यूटिकल कंपनी हादसे में 2 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी और कम से कम 5 लोग हताहत हुए थे। इसी के साथ 22 अगस्त 2024 के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। दीजिए वृषाली को इजाजत। नमस्कार।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।